मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 18 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्रों के नाम हैं शिवानंद यादव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, आस्था सिंह ग्राम मंगारी जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश से और फैजान दिल्ली से। तो शिवानंद, आस्था और फैजान, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जब मैं उनके स्थान का नाम ले रहा था स्टूडेंट्स के, तब आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा जब मैंने विलेज शब्द कहा और मंगारी का उच्चारण किया, विलेज ग्राम मंगारी। दरअसल अब मैं कुछ इस तरह की नीति लेकर के चल रहा हूं कि जो अपने छोटी जगह का नाम लिखते हैं, गांव का नाम लिखते हैं या छोटे कस्बे में रह रहे हैं, देखिए इलाहाबाद वाराणसी दिल्ली इन सब के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अगर वो अपने गांव का नाम लिखते हैं जहां वो सच में रह रहे हैं, जहां हैं वो, तो मैं अब उनका भी नाम लिया करूंगा। इससे कम से कम उन गांव से आपका जुड़ाव होता है, उन गांव का नाम आप सुनते हैं तो आपको गांव से भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिचय मिलता है। और बड़ी बात यह है कि जो दूसरे भी स्टूडेंट होंगे वह भी इसको इस रूप में लेंगे कि नहीं, अगर उस गांव से वो जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है, तो हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। यानी कि कुल मिलाकर के ये कि मैं न केवल गांव को सम्मान ही देने की नीति पर काम कर रहा हूं, बल्कि सच पूछिए तो आपकी सीमाओं का भी हो सकता है कि इस आधार पर विस्तार हो, इसका भी थोड़ा सा काम इसके माध्यम से हो सकेगा। तो दोस्तों आइए, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स से जो अभी आने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और मेरे पास कुछ मेल आए, दरअसल 3-4 मेल आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर अभी तो क्लासेस के बहुत दिन बाकी हैं, तो हम जो नए स्टूडेंट हैं जो आने वाले हैं उनको भी बीच बीच में आप कुछ बता दिया कीजिए, कुछ संबोधित किया कीजिए, अच्छी बात है। इसका उनकी इस भावना की मैं पूरी कद्र करता हूं क्योंकि उनमें कम से कम इतनी उत्सुकता तो है, इतनी शीघ्रता तो है। तो मित्रों, इसकी शुरुआत में इस बात से कर रहा हूं कि आप सब का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य इस मायने में कि बहुत हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो क्लासेस हैं ये बेसिकली इस बात के लिए हैं कि आपको तैयारी करनी कैसे है। तो इसीलिए इस ऑडियो के माध्यम से तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आप कैसे तैयारी करेंगे। हाँ, जो डेली ऑडियो लेक्चर जा रहा है यूं मान करके चलिए कि ये आपके लिए मस्ट है, आपके लिए अनिवार्य है। दूसरे जो मेरे प्रिय श्रोता हैं उनको अपने ढंग से, अपने अपने ढंग से छूट है कि वो जब चाहे सुने न सुने, बीच में छोड़े, कुछ को सुने, सबको सुने, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप सब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मान करके चलिए कि एकेडमी और आपके बीच में एक प्रकार का समझौता है और इस समझौते पत्र पर आपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो आपके लिए मैं कुछ अनिवार्य बातें कह सकता हूं, यानी कि अधिकार रखता हूं। और उसके तहत मित्रों की आपको डेली ऑडियो लेक्चर एटलीस्ट रोज सुनना ही सुनना है। अगर आप लाइफ मैनेजमेंट को भी सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरी सलाह है, आदेश नहीं है। लेकिन डेली ऑडियो लेक्चर के लिए आप मानकर चले कि यह आदेश जैसा ही है और बीच बीच में मैं आपसे इस तरह की और कुछ बातें करता रहूंगा। फ्रेंड्स, आज हम मुख्य विषय के रूप में संघात्मक स्वरूप पर बात करेंगे, सहकारी संघवाद पर हम कुछ बातें करेंगे। आइए पहले न्यूज देख लेते हैं, और इनफैक्ट आज केवल एक ही न्यूज इम्पॉर्टेंट है, मतलब चर्चा करने के लिए कल की एक ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है और वह है प्रधानमंत्री के हमारे नार्डिक भारत सम्मेलन में जो गए थे उसकी खबर। मुझे यकीन है कि कल भी आप लोगों ने डीडी न्यूज सुना होगा, देखा होगा, तो उसमें भी खासकर जो नार्डिक कंट्रीज हैं, जिसका हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं, जिसमें आपका स्वीडन आता है, डेनमार्क जैसे देश आते हैं, उनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, फिनलैंड वगैरह हैं, उनके बारे में एक अच्छा डिस्कशन कल भी था और उसमें भी जो उस क्षेत्र में हमारे पूर्व राजदूत रह चुकी हैं वो आई थी और उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत ही व्यावहारिक बातें उन्होंने बताई। मित्रों सच पूछिए तो ये डिस्कशन भले ही 10 मिनट का क्यों ना होता, इस तरह के डिस्कशन 10 मिनट के क्यों ना होते हों, लेकिन इनकी दो सबसे बड़ी खासियत होती है। पहली बात तो है कि उस 10 मिनट में आपको 10 घंटे का लाभ मिलता है। उसमें 10 मिनट में आप जो कुछ भी सुनते हैं, हो सकता है कि आप 10 घंटे पढ़ें तो भी आपको उतनी जानकारी ना हो सके, पहली बात। दूसरा लाभ ये होता है कि जब डिस्कशन होते हैं तो बिल्कुल करेंट इश्यूज पर होते हैं, तात्कालिक मुद्दों पर होते हैं, और जब तात्कालिक मुद्दों पर बात हो रहे हैं तो उसमें ये बातें बताई जाएंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप किताब में किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो देखिए अब तो लिखने वाले ने अपने ढंग से लिख दिया है, तो आपको सारा कुछ पढ़ना है और उसमें से अपने लिए जरूरी चीजें निकालनी है, तो वहां ज्यादा चीजें पढ़ करके थोड़ी सी चीजें निकलती हैं, यहां थोड़ी सी चीजें सुन करके और उसमें से ज्यादा चीजें निकल जाती हैं, तो इसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपने कल डीडी न्यूज सुना और देखा होगा तो आप शायद मेरी बात पर थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं। न्यूज में आपने सुना कि स्वीडन के साथ जो भारत की बातचीत हुई है उसमें सबसे बड़ा जो शब्द है जो हमें दिमाग में रखना चाहिए वो नवोन्मेषता का है, इनोवेशन का है। और कल भी मैंने आपसे चर्चा में बताया था कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये नवोन्मेषता के मामले में, इनोवेशन के मामले में, ये नवोन्मेषता जरा बोलने में गड़बड़ हो जाता है, इनोवेशन के मामले में अद्भुत है, टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत अच्छी है और ये भारत के लिए एक बहुत ही शुभ, बहुत अच्छी शुरुआत है। नो डाउट कि उनके लिए भी शुरुआत है क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है, इतनी आबादी है और डेवलपिंग कंट्री है और भारत को इतनी सारी इनकी सब टेक्नोलॉजी की जरूरत है कि उनका भी बिजनेस बढ़ेगा और भारत को वो टेक्नोलॉजी मिल सकेगी और भारत की स्थिति बेहतर हो सकेगी। तो ये विन विन पोजिशन है, यानी कि दोनों ही इसमें जीतेंगे, ये हार जीत का मामला नहीं है, ये एक ऐसा गेम है जिसमें दोनों को जीतना है। और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में आपने न्यूज में ये सुना भी। मित्रों जब आप दुनिया के 5 ग्रीन सिटीज के नाम ढूंढेंगे कि दुनिया में 5 ग्रीन सिटी यानी कि बिल्कुल स्वच्छ प्रदूषण रहित शहर कौन से हैं, तो उसमें आपको एक शहर मिलेगा स्टॉकहोम, फर्स्ट 5 में स्टॉकहोम, ये स्वीडन में है। दूसरा आपको नाम मिलेगा कोपनहेगन, कोपनहेगन ये डेनमार्क में है। शुरू के 5 टॉप के जो देश हैं इसमें 2 सोच करके देखिए कि नॉर्डिक कंट्री हैं, तो ये भी बताता है कि किस तरीके से ये जो देश हैं अपने यहां के सिस्टम को परफेक्ट बनाते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि जब हैप्पी इंडेक्स की बात होती है और आर्थिक विकास का, आर्थिक स्तर की बात होती है, तो ये देश लगभग लगभग हर साल टॉप पर होते हैं। दोस्तों एक डेटा है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो दिमाग में दर्ज कर लीजिए, कभी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कि स्वीडन में ही भारत जो हमारे भारतीय प्रवासी लगभग 20,000 लोग वहां रह रहे हैं, भारतीय वहां रह रहे हैं। मित्रों अब खासकर जब बातचीत पूरी हो गई है तो हो सकता है कि इस टॉपिक पर कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिले, एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ने को मिले, और जब भी ऐसा होगा तो फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। राइट, अब हम मुख्य विषय पर आते हैं और आज का हमारा मुख्य विषय है मित्रों सहकारी संघवाद। देखिए इस विषय को मैंने क्यों चुना है, उसका सिंपल सा रीजन है और उसे आप जानते भी होंगे कि अभी जो फाइनेंस कमीशन है, उस फाइनेंस कमीशन के कुछ टर्म्स को लेकर के दक्षिण भारत अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, खासकर आबादी के मुद्दे को लेकर के, और इस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं इसलिए उस विषय पर हम नहीं आएंगे। ध्यान होगा आपको कि 3-4 दिन पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी और मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन्स की दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूं। वैसे भी अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखें तो फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के लगभग लगभग हर साल या एक आध साल गैप करके करंट से जोड़ते हुए कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। और अगर हम इसे करंट से जोड़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो फाइनेंस कमीशन जो हमारा वित्त आयोग है वो इससे जुड़ जाएगा। संघवाद क्या है मित्रों आप जानते हैं, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि इस तरह के जो टॉपिक हैं जो हमारे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे पॉलिटिकल साइंस की किताबों में है, उन्हें आप करंट के साथ जोड़कर लगातार अपडेट करते जाएं, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो मान करके चलिए कि आप सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह सिविल सर्विस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो शशि थरूर साहब का है, बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति हैं और बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही तार्किक तरीके से लिखते हैं और कंटेंट भी इनके पास खूब है। खैर, ये शुरू से ही बहुत ही एकेडमिक नेचर के रहे हैं। इन्होंने देखे कि क्या अच्छी बात बताई है और जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के तहत उन्होंने बताई है। देखिए, संघात्मक का मतलब आप जानते हैं कि एक केंद्र सरकार है और बाकी राज्य हैं, तो राज्य अपने अपने मामलों में स्वतंत्र हैं, कुछ मामलों में वो केंद्र सरकार के साथ हैं, जैसे विदेशी मामला हुआ, डिफेंस हुआ, संचार हुआ, इसमें वो केंद्र सरकार, इन सब इश्यूज पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है और बाकी इश्यूज पर राज्य के अपनी ऑटोनोमी होती है और वो अपनी तरफ से निर्णय लेती है। और अगर राज्यों को यह पूरी स्वतंत्रता है तो इसे आप कहेंगे कि यह बहुत ही आदर्श स्थिति है, बहुत ही आदर्शतम स्थिति है संघात्मक स्वरूप की। और अगर इसमें कहीं खामी आ रही तो मान करके चले कि मामला कुछ गड़बड़ है। आपको ध्यान होगा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो लगातार सहकार संघवाद की बात करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अब लोगों को महसूस होने लगा है कि नहीं, सहकार संघवाद जैसी स्थिति है नहीं। बेसिकली अभी भी केंद्र प्रोमिनेंट है, यानी कि जो निर्णय लेने वाली शक्ति है, जो नियंत्रित करने वाली शक्ति है, वो मूलतः केंद्र ही है। और देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, केंद्र में एक सरकार है किसी भी पार्टी की, और अगर राज्य में भी उन्हीं पार्टियों की सरकार है तो क्या होगा? बट नेचुरली कि केंद्र राज्य की पार्टियों को, चूंकि उन्हीं की अपनी पार्टी है, तो पॉलिटिकल लेवल पर डिक्टेट करेगा, ठीक है। और राज्य की ये जो पार्टियां हैं वो केंद्र की बात को ज्यों का त्यों फॉलो करेंगी, क्योंकि हाई कमान वही है। लेकिन अगर राज्यों में दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारें हैं तो देखिए, पॉलिटिकल लेवल पर तो उनकी फिलॉसफी अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन नो डाउट कि भारत एक राष्ट्र है, उस हिसाब से वो उसके हिस्से हैं, उसके साथ हैं, तो वहां फिर संघात्मक स्वरूप की संभावना ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है अगर राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार हो, या फिर अगर केंद्र सरकार भी है तो केंद्र सरकार गठबंधन की सरकार हो, कॉलिशन गवर्नमेंट हो। कॉलिशन गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि दूसरी पार्टी के लोग भी सरकार में शामिल हैं, और अगर दूसरी पार्टी के लोग भी सरकार में शामिल हैं तो बट नेचुरल है कि फिर वो अपने अपने राज्यों से, जहां से उनकी पार्टी सत्ता में है, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे, तो वहां संघात्मक स्वरूप बहुत अच्छे से काम करता है। अभी जो लोग महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार संघात्मक रूप में उतने अच्छे से काम नहीं कर रही, उसका एक कारण यही है कि केंद्र में भले ही गठबंधन की सरकार हो, लेकिन वो तथाकथित गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत है, और देखिए कि कितने सारे राज्यों में उनकी पार्टी सत्ता में आ गई है, तो बट नेचुरल है कि ऐसे में केंद्र का प्रभुत्व बढ़ता चला जाता है, राइट। अब देखिए कि जो सबसे बड़ी देन है इस सरकार की संघात्मक स्वरूप के तहत, तो हम जीएसटी काउंसिल को तो कह सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल संघात्मक लक्षण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो इस सरकार की देन है। इसी पैटर्न पर अब दूसरी तरह की मांगे होने लगी है। जैसा कि मैंने कहा कि शशि थरूर जी ने अपने आर्टिकल में जो एक उल्लेख किया है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को लेकर, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, और इस तरह की बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि सामान्य स्टूडेंट के रूप में ये आइडियाज दिमाग में नहीं आ सकते, मतलब संभावना तो यही है कि नहीं आएगी। अब उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे अब मुक्त व्यापार हो गया, तो ठीक है, अब मुक्त व्यापार समझौते में सब कुछ केंद्र सरकार दूसरे देशों से समझौता कर रही है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने ये उदाहरण दिया कि जैसे काली मिर्च के लिए केंद्र सरकार ने एक समझौता किया, तो समझौता यह हुआ है कि वियतनाम से काली मिर्च भारत आएगी और श्रीलंका होते हुए आएगी, यानी कि श्रीलंका से काली मिर्च भारत मंगवाएगा और वियतनाम की काली मिर्च होगी, और वो जो काली मिर्च होगी वो बहुत सस्ती होगी, मतलब भारतीय उत्पादन की तुलना में वो सस्ती होगी, ठीक है। अब देखिए कि काली मिर्च पैदा करने वाले हमारे साउथ के कुछ स्टेट हैं, केंद्र ने यह समझौता कर लिया और व्यापार शुरू हो गया। जो चीफ मिनिस्टर का कहना है वो ये कहना है कि अब वो जब काली मिर्च अब बाहर से इंपोर्ट हो रही है, भारत में आ रही है, तो केंद्र सरकार को ये ज्ञान नहीं है कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट केरल जैसे राज्यों पर पड़ेगा जो काली मिर्च पैदा करते हैं। कर्नाटक में भी काली मिर्च होती, केरल में तो बहुत ही ज्यादा होती है, हो सकता है कि वहां के किसान पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो उन्होंने कहा कि अब ये है हमारा मामला, हमारे किसान उससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में निर्णय ले लिया है केंद्र सरकार ने, तो अब आप देखेंगे कि यहां संघात्मक स्वरूप के आपको विपरीत काम करता हुआ ये जो सिस्टम है ये दिखाई देगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, इस तरह का एक जीएसटी काउंसिल के पैटर्न पर एक इस तरह का भी परिषद बनाया जाना चाहिए जिसमें खासकर जब आर्थिक नीतियों का निर्धारण हो रहा हो तो केंद्र के साथ साथ राज्य भी उसमें शामिल हो और राज्य अपनी बात रख सके। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण मित्रों यह है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ऑलरेडी आर्टिकल में मैं वो लिखा हुआ है, मैं दूसरे भी आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इनके आधार पर आप डेफिनेटली इस टॉपिक को तो अच्छे से तैयार कर ही लीजिएगा। मित्रों अब मैं आता हूं ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कुछ इन्हीं में से मित्रों के नाम हैं, शिवानी सिंह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, हिमांशु शर्मा, प्रगति कुमारी छपरा बिहार से और दीपक कुमार आप भी छपरा बिहार से हैं, अतुल कुमार रावत हरदोई उत्तर प्रदेश से, अमित कुमार कैलाशपति साव कोलकाता से और मोहम्मद आबिद हुसैन, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त किया जाना चाहिए। नमस्कार।